नमस्कार, आज हम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य के विचारों की गहराई में उतर रहे हैं।
नमस्कार।
और आज का विषय है उनके मार्गदर्शन पर आधारित साकार और निराकार ध्यान।
हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये।
हमारे पास पूज्य गुरुदेव के उद्बोधन के कुछ अंश हैं, तो हम कोशिश करेंगे समझने की कि ध्यान की ये दो पद्धतियाँ असल में हैं क्या
और इनका महत्व क्या है ना?
बिल्कुल। और जैसा गुरुदेव ने कहा, ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं है, ये तो जीवन के हर पहलू में काम आने वाली कला है, मन को साधने की।
सही कहा, एक साधना है।
तो चलिए शुरू करते हैं। पूज्य गुरुदेव ने शुरुआत एक बड़े ही मतलब सुंदर उदाहरण से की है, दीपक का।
हाँ, दीपक का उदाहरण।
जैसे दीपक खुद जलता है, अपना स्नेह मतलब तेल वो गलाकर अंधेरे में प्रकाश फैलाता है, ठीक वैसे ही गुरुदेव कहते हैं साधक को भी परमात्मा की कृपा पानी है, दूसरों को राह दिखानी है तो अपने अहंकार को, स्वार्थ को गलाना पड़ता है।
हाँ, ये गलना या जलना शब्द बहुत गहरा है।
तो क्या इसका मतलब सिर्फ कोई बाहरी त्याग है या कुछ और?
नहीं, देखिए, यही पूज्य गुरुदेव की विशेषता है। उनके अनुसार ये जलना बाहरी कर्मकांड से कहीं ज्यादा आंतरिक शुद्धि के बारे में है।
आंतरिक शुद्धि मतलब?
मतलब मन की सफाई। वो बाहरी स्नान से ज्यादा जोर मन, इच्छाओं और विचारों की शुद्धि पर देते थे।
अच्छा।
उनका साफ कहना था, शरीर के धोने का मतलब इच्छाओं, भावनाओं, विचारणाओं की सफाई से है। भीतर अगर मैल जमा है तो बाहर कितना भी नहा लो क्या फायदा।
सही बात है। और इसी शुद्धि के साथ गुरुदेव फिर जप और ध्यान को जोड़ते हैं।
हाँ बिल्कुल।
अक्सर हम सुनते हैं लोग कहते हैं, भाई जप तो करते हैं, माला फेरते हैं, पर मन तो यहाँ वहाँ भागता रहता है।
हाँ, ये आम समस्या है। मन बहुत चंचल है।
तो इसी भटके हुए मन को एकाग्र करने के लिए उन्होंने दो रास्ते सुझाए है ना?
बिल्कुल, दो मुख्य तरीके, साकार और निराकार ध्यान।
साकार ध्यान इसमें क्या होता है?
साकार ध्यान में, जैसा नाम से ही पता चलता है, हम किसी साकार रूप या आदर्श पर मन टिकाते हैं, जैसे माँ गायत्री का ध्यान।
माँ गायत्री?
हाँ, लेकिन यहाँ गुरुदेव की एक खास बात समझने जैसी है। उनके लिए माँ गायत्री सिर्फ कोई देवी की प्रतिमा नहीं थी।
अच्छा, तो फिर?
वो प्रतीक थी सद्बुद्धि और सद्विवेक की, मतलब सही समझ और सही निर्णय लेने की क्षमता की देवी।
ओह, तो ये सिर्फ मूर्ति पूजा नहीं है बल्कि एक ऊंची सोच को, एक गुण को अपनाने जैसा है।
हाँ बिल्कुल। और इसका व्यावहारिक रूप क्या है? हर नारी में, खासकर युवा स्त्री में, पवित्र माँ का रूप देखना।
माँ का रूप देखना?
हाँ। गुरुदेव उदाहरण देते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का। जब युद्ध में शत्रु पक्ष की एक सुंदर बहू बंदी बनकर आई तो शिवाजी ने उसे देखकर कहा, काश मेरी माँ भी इतनी सुंदर होती, और उसे सम्मान सहित वापस भेज दिया।
वाह, अद्भुत।
या अर्जुन का उदाहरण, जब उर्वशी ने उनके सामने प्रस्ताव रखा तो उन्होंने उसे माँ कहकर संबोधित किया। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये चरित्र की पवित्रता का आदर्श है।
ये बात तो बहुत गहरी है।
हाँ।
और माँ गायत्री के साथ उनका वाहन हंस भी जुड़ा है।
हाँ।
उसका भी तो कुछ प्रतीकात्मक अर्थ बताया है गुरुदेव ने।
हाँ हाँ बिल्कुल। हंस प्रतीक है नीर शीर विवेक का।
नीर शीर विवेक
यानी पानी और दूध को अलग करने की क्षमता, मतलब सत्य और असत्य, सही और गलत को पहचानने की समझ। जैसे हंस केवल मोती चुनता है, वैसे ही विवेकी भक्त सद्गुणों को अपनाता है, दुर्गुणों को छोड़ देता है।
अच्छा,
तो संदेश साफ है, जिसका जीवन पवित्र है, जिसमें विवेक है, वही भक्त गायत्री रूपी सद्बुद्धि को धारण कर सकता है।
समझ गई। ये तो हुई साकार ध्यान की बात। अब आते हैं निराकार ध्यान पर। वो क्या है और उसका क्या महत्व है?
निराकार ध्यान मतलब बिना किसी रूप का ध्यान। पूज्य गुरुदेव इसे सविता देवता यानी सूर्य पर केंद्रित करने को कहते हैं।
सूर्य पर?
हाँ, सूर्य क्या है? तेज, ऊर्जा, शक्ति का अनंत स्रोत। गुरुदेव इसे पिता के समान मानते हैं।
पिता के समान कैसे?
जैसे पिता परिवार के लिए साधन जुटाता है, सामर्थ्य देता है, सुरक्षा देता है, वैसे ही सूर्य हमें ऊर्जा, शक्ति, जीवन देता है।
वही गायत्री माँ की तरह है, स्नेह, करुणा, पोषण देने वाली।
अच्छा, तो एक माँ का रूप एक पिता का।
हाँ, जीवन के लिए दोनों ही जरूरी हैं, विवेक और पवित्रता भी, और शक्ति और सामर्थ्य भी।
लेकिन गुरुदेव ने साधना के क्रम पर भी तो जोर दिया है, मतलब पहले कौन सा ध्यान करना चाहिए।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि साधक को पहले साकार ध्यान से शुरुआत करनी चाहिए, माँ गायत्री की उपासना यानी सद्बुद्धि और पवित्रता की साधना पहले।
पहले पवित्रता क्यों? शक्ति पहले क्यों नहीं?
क्योंकि बिना आंतरिक शुद्धि, बिना पवित्रता और स्नेह के अगर शक्ति आ जाए जो निराकार ध्यान से मिलती है, तो वो खतरनाक हो सकती है।
खतरनाक कैसे? पर कामनाओं पर विजय पाना मुश्किल हुआ।
हाँ, ये तो है।
तो गुरुदेव कहते हैं, पहले पात्रता विकसित करो, प्रेम, करुणा, पवित्रता लाओ, फिर शक्ति को धारण करने लायक बनोगे। शक्ति पाना एक बात है, उसे पचाना, संभालना, वो ज्यादा जरूरी है।
मतलब शक्ति पाने से पहले उसे संभालने लायक बनना जरूरी है, पात्र बनना जरूरी है।
बिल्कुल। इसी संदर्भ में गुरुदेव ने गुरु के ध्यान को भी बहुत महत्व दिया है।
हाँ, गुरु का ध्यान, वो क्यों महत्वपूर्ण है?
क्योंकि गुरु एक प्रत्यक्ष सत्ता है। साधक ने उन्हें देखा है, उनकी बातें सुनी है, उन पर विश्वास किया है।
अच्छा, हाँ।
तो ऐसे जाने पहचाने विश्वसनीय स्वरूप पर मन टिकाना आसान होता है, मन कम भटकता है, संकल्प विकल्प कम उठते हैं और सीधा मार्गदर्शन भी मिलता रहता है।
ये बात भी सही है। तो कुल मिलाकर, चाहे साकार ध्यान हो या निराकार या फिर गुरु का ध्यान, असली मकसद क्या है इन सब का?
असली मकसद है आत्मविस्मृति से बाहर आना। हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम खुद को सिर्फ ये शरीर मान लेते हैं।
हाँ, ये तो होता है।
ध्यान हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं। हम ईश्वर के अंश हैं। हमारा असली लक्ष्य क्या है? सिर्फ दुनियावी चीजें पाना नहीं, बल्कि पूर्णता, परमात्मा की प्राप्ति। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने चंचल मन को, जो अक्सर नीचे की ओर भागता है, उसे नियंत्रित करके ऊंचे लक्ष्यों की तरफ मोड़ना।
मन को नियंत्रित करना।
हाँ, मन का निग्रह।
तो अगर संक्षेप में कहें तो साकार ध्यान हमें प्रेम, पवित्रता, करुणा सिखाता है, जो कि नींव है।
बिल्कुल, वो आधार है।
और निराकार ध्यान हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है, जिसे हमें पवित्रता और विवेक हासिल करने के बाद ही साधना चाहिए।
एकदम सही। पहले पात्रता, फिर शक्ति, यही क्रम है।
बहुत सुंदर तरीके से समझाया आपने।
और पूज्य गुरुदेव के इन विचारों से एक आखिरी बात जो उभरती है, वो ये है कि ध्यान सिर्फ कोई पूजा पाठ या धार्मिक क्रिया नहीं है।
हाँ?
ये मन को प्रशिक्षित करने का, उसे साधने का एक विज्ञान है, एक कला है।
मन को साधने का विज्ञान?
हाँ, जैसे एक जंगली हाथी को साधा जाता है ताकि वो उपयोगी काम कर सके, या जैसे पानी का स्वभाव तो नीचे बहना है पर पंप लगाकर उसे ऊपर चढ़ा दिया जाता है, वैसे ही ध्यान के अभ्यास से हम मन की जो स्वाभाविक चंचलता है, जो निम्नगामी प्रवृत्तियां हैं, बुरी आदतें हैं, उनको काबू में करके उसे एकाग्र, स्थिर और श्रेष्ठ लक्ष्यों की ओर मोड़ सकते हैं।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
अब सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जो भाग दौड़ है, जो चुनौतियां हैं, उसमें इस एकाग्रता और आत्मनियंत्रण का अभ्यास कैसे करें, इसे जीवन में कैसे उतारें?
ये प्रश्न हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं, इस पर विचार करें।
हाँ, जरूर।
ओम शांति।